आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचाव। ये कक्षा आठवीं के विषय विज्ञान का आठवां अध्याय है। बच्चों, ये अध्याय हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, इसलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर देखी होगी। कभी ना कभी आपको खांसी या बुखार की तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी। तो आप लोगों को पता है कि जब भी कभी कोई बीमारी हमारे शरीर को होती है, उस वक्त हमारा शरीर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, बहुत कमज़ोरी हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस अध्याय को पढ़ें और अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएं। तो सबसे पहले हमने इस अध्याय में गतिविधि एक की थी। गतिविधि एक में आपने क्या किया था? मैंने आपको कहा था कि आपको अपने आसपास, घर के आसपास जो भी कोई चिकित्सालय है, आपको वहां जाना है और आपको वहां पर जो मरीज़ हैं उस चिकित्सालय के अंदर में, आपको पता लगाना है कि उन मरीज़ों को क्या क्या बीमारियाँ हुई हैं और वो बीमारियाँ उनको जो हुई हैं उससे उनको लक्षण क्या क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको पता लगाने हैं। मैंने आपको ये कहा था कि उस वक्त जब आप चिकित्सालय में पहुंचे, आप किसी भी चीज को खुद हाथ नहीं लगाएंगे, आप नर्स या फिर डॉक्टर से ही पता लगाएंगे कि वहां पर जो मरीज हैं उनको क्या क्या बीमारियां हुई हैं। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि जो चिकित्सालय के अंदर में अलग अलग कमरे होते हैं जहां पर कभी कभी लोगों का जाना वर्जित होता है, मना होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मरीज वहां पर मौजूद हैं उनको आपकी वजह से कोई बैक्टीरिया लग जाएंगे जिससे उनको और तकलीफ बढ़ सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीजों की वजह से आपको कोई बैक्टीरिया लग जाएंगे, इसलिए आपको मना किया जाता है उन कमरों में जाने के लिए। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्दी खांसी के वक्त अगर कभी हमें छींक आती है तो हमें रुमाल लगाना चाहिए ताकि हमारे मुंह के अंदर से जो बैक्टीरिया बाहर निकल रहे हैं वो किसी और को संक्रमित ना करें और किसी और को भी ये बीमारी ना लग जाए। उसके बाद हमने बात की थी संक्रामक रोग के बारे में और असंक्रामक रोग के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं, मतलब कि एक रोगी व्यक्ति जिसको वो रोग हो गया है पहले से, उसके रोगी होने की वजह से अगर वो छींक दे या खांस दे या फिर किसी और रूप से क्या करे, अगर वो वायु में या जल में या भोजन में उस रोगी व्यक्ति के कीटाणु आ जाएंगे, तो उसके संपर्क में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो रोगी नहीं है तो उसको भी अगर वो बीमारी लग जाती है तो उस बीमारी को हम संक्रामक रोग कहेंगे। संक्रामक मतलब कि ऐसी बीमारी जो एक रोगी व्यक्ति से एक दूसरे ऐसे व्यक्ति को लग सकती है जो अरोगी हो, जो निरोग हो, तो ऐसी बीमारियों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण है हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग या फिर सर्दी जुकाम। उसके बाद हमने असंक्रामक रोग के बारे में बात की थी। असंक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं होते, जो स्वस्थ है, जो निरोग है, और इसके उदाहरण है कैंसर या फिर जोड़ों का दर्द। उसके बाद हमने सारणी 8.1 में बात की थी अलग अलग बीमारियों के बारे में, जैसे कि क्षय रोग। मैंने आपको बताया था क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम की वजह से, जो एक जीवाणु है, और वायु के द्वारा इसका संक्रमण होता है। लक्षण होते हैं भूख नहीं लगता, वजन घटने लगता है, बीमारी होने की वजह से कमजोरी बढ़ने लगती है, लगातार सर्दी या फिर कफ की तकलीफ देखी गई है, और जो लोग होते हैं जिनको क्षय रोग हो गया है उनको ताप हो जाता है बहुत ज़्यादा, उनको बुखार होता है, उनके थूक में रक्त आने की बीमारी भी देखी गई है, तकलीफ देखी गई है, सीने में दर्द की तकलीफ भी देखी गई है, ज़्यादा चलने पर ऐसे व्यक्तियों में सांस फूलने की तकलीफ भी देखी गई है, इनकी लसिका ग्रंथि भी फूल जाती है और इनके जो आहार की नली होती है, हड्डियां और फेफड़े, ये सभी भी प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्षय रोग से बचाव के भी तरीके पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें जो रोगी व्यक्ति है उसको अलग रखना चाहिए, उनकी चीज़ों को अलग रखना चाहिए, जो उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उनको अलग रखना चाहिए, रोगी व्यक्ति का टीकाकरण करवाया जाना चाहिए और रोगी व्यक्ति को कहीं पर भी नहीं थूकना चाहिए, खांसते वक्त मुँह पर कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्षय रोग से बचाव के लिए उससे उपचार जो किया जाना चाहिए वो ऐसे किया जाता है कि जो थूक होता है रोगी व्यक्ति का, उसकी जांच की जाती है, उनके सीने का एक्सरे किया जाता है और उसके बाद जब पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को क्षय रोग हो गया है तो उनको चिकित्सक के द्वारा MDT या फिर डॉट्स दिया जाता है, जो दवाइयाँ हैं जिससे कि क्षय रोग का नियंत्रण हो सके। उसके बाद आगे हमने हैजा के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि हैजा भी जीवाणु से होता है, जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी, और संचरण इसका होता है दूषित जल या फिर दूषित भोजन के द्वारा। उसके बाद हमने बात की थी कि लक्षण क्या क्या है हैजा के, तो हमने ये बताया था आपको कि उल्टियाँ होती हैं, जिस व्यक्ति को हैजा हो जाता है उसको उल्टियाँ होती हैं, जलीय दस्त होता है, जल वाला दस्त होता है, उनके मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, शरीर में उनकी कमी आ जाती है, मतलब कि कमजोरी हो जाती है, बुखार होता है, तेज बहुत प्यास लगती है, जीभ सूखने लगता है, आंखें धंसने लगती है, पेट तथा आंत में संक्रमण हो जाता है। उसके बाद ऐसे व्यक्तियों से हमें बचाव कैसे किया जाना चाहिए, चाहे हैजे से हमको खुद को कैसे बचाना चाहिए, तो यहाँ पर हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, भली भांति पके हुए भोजन को ही हमें खाना चाहिए, अच्छे से पके हुए भोजन को खाना चाहिए, पानी को उबाल करके उसके बाद उसे ठंडा करके उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपने आसपास हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए, अगर आसपास कोई सड़ी गली चीज़ है, चाहे मल मूत्र है, तो उसको वहाँ से हटवा देना चाहिए, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि रोगी व्यक्ति से हमें खुद को दूरी बनाए रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उपचार कैसे किया जाना चाहिए, तो जो रोगी व्यक्ति है उसको ORS का घोल दिया जाना चाहिए, जीवन रक्षक घोल इसे कहते हैं, ये दिया जाना चाहिए, और साथ में जो भी दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं वो सभी दी जानी चाहिए। उसके बाद आगे हमने बात की थी टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड भी होता है एक जीवाणु से, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसका संचरण होता है जल द्वारा या फिर दूषित भोजन के द्वारा भी होता है। उसके बाद हमने ये बताया था आपको कि छोटी आंतों में संक्रमण हो जाता है। टाइफाइड जब किसी व्यक्ति को होता है तो उनकी छोटी आंतों में संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से उनके सर में प्रतिदिन दर्द रहता है, तेज बुखार रहता है, और तेज बुखार जो होता है ऐसा देखा जाता है कि दूसरे दिन बहुत ज़्यादा तेज बुखार रहता है, दूसरे हफ्ते, और तीसरे चौथे हफ्ते ये जो बुखार होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। और जिन व्यक्तियों को टाइफाइड हो जाता है उनमें कब्ज़ की तकलीफ़ देखी गई है, उनका जो हृदय स्पंदन होता है, हार्ट बीट जो होती है, वो धीमी हो जाती है, उनके जीभ के ऊपरी हिस्से पर लाल चकत्ते भी देखे गए हैं। उसके बाद हमें खुद को बचाव कैसे करना चाहिए टाइफाइड से, तो हमें हमेशा शुद्ध भोजन और शुद्ध जल ही खाना चाहिए। आस पर अगर कोई गंदगी है, मल के पदार्थ हैं, दूषित पदार्थ हैं, तो उनको वहाँ से साफ़ करवा देना चाहिए। हमारे आसपास के इलाकों को हमने साफ़ रखना चाहिए। अपने भोजन को हमें मक्खियों से बचाना चाहिए, और अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उनको टीका भी लगवाना चाहिए डॉक्टर की सलाह लेकर। उसके बाद उपचार क्या क्या है, तो अगर जिस व्यक्ति को हो गया है टाइफाइड तो उनको बुखार आने पर उनको पूरा आराम दिया जाना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक दिए जाने चाहिए, और अलग अलग दवाइयाँ भी दिए जानी चाहिए। उसके बाद आगे हमने बात की थी पोलियो के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पोलियो जो होता है वो एक वायरस से होता है, जिसका नाम है पोलियो वायरस, और इसका संचरण होता है वायु या फिर जल के द्वारा। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो जिस व्यक्ति को पोलियो की बीमारी हो जाती है उसके मेरु रज्जा, मस्तिष्क और पैर जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद उनको बुखार आने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, हाथ पैर जो प्रभावित होते हैं उनका विकास बहुत कम हो जाता है, सिर दर्द होता है, उल्टी आती है, गर्दन में दर्द होता है, और जो तंत्रिका तंत्र है उसकी तंत्रिका तंत्र भी नष्ट होने लगती है, उसका जो प्रभाव होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से हाथ पैर जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और ये देखा जाता है 6 महीने से 3 साल के बच्चों के बीच में पोलियो की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो पोलियो से बचाव के क्या उपाय हैं, हमें हमेशा पोलियो की दवा जब भी कभी दी जाती है उसको हमें ज़रूर लेना चाहिए। छोटे बच्चों को समय समय पर पोलियो की ड्रॉप्स ज़रूर पिलाई जानी चाहिए। उसके बाद इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, उपचार इसका किया जाता है डॉक्टर की निगरानी में, ऑपरेशन किया जा सकता है, या फिर आपको हमेशा जीवन भर सहारे का प्रयोग करके चलने की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। उसके बाद आगे हमने बात की थी रेबीज़ के बारे में। मैंने आपको बताया था रेबीज़ होता है एक वायरस से, और रेबीज़ को जलांतक भी कहते हैं। और ये संक्रमित कैसे होता है, संक्रमित होता है ये कुत्तों के द्वारा, बंदरों के द्वारा, लोमड़ी, भेड़िए या फिर ऐसे जो जानवर हैं जिनमें रेबीज़ की बीमारी है, अगर उनकी लार दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएगी तो उसको रेबीज़ की तकलीफ़ हो सकती है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, रेबीज़ की बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, तेज बुखार आता है मरीजों में, सिरदर्द होता है, बेचैनी देखी गई है, उनके कंठ अवरुद्ध हो जाता है जिसकी वजह से उनको पानी या फिर कोई भी खाने की चीज़ों से उन्हें डर लगने लगता है। और इससे आपके बचाव के क्या क्या उपाय हैं? तो बचाव के उपाय ये हैं कि आपके आसपास अगर कोई आवारा जानवर है, आवारा कुत्ते, बिल्लियाँ या फिर कोई बंदर, कोई भी जो जानवर हैं, उनको आपको टीकाकरण करवाना चाहिए। आप म्यूनिसिपैलिटी को कॉल कर दो, फ़ोन कर दो और उन्हें जानकारी दे दो कि आपके इलाके में ये जानवर हैं। उसी हिसाब से जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होंगे वो आकर के उन जानवरों को टीकाकरण दे देंगे, या फिर अगर उन्हें रेबीज़ की बीमारी है तो उसी हिसाब से वो जो लोग होंगे वो देख लेंगे कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद उपचार कैसे किया जाना चाहिए, तो जिस व्यक्ति को अगर रेबीज़ की तकलीफ़ हो गई है उनको टीकाकरण दिया जाता है, उनको एंटी रेबीज़ की इंजेक्शन दी जाती है। इसलिए जल्द से जल्द अगर आपको किसी जानवर ने काट दिया है तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये प्राण घातक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से मौत हो सकती है, इसलिए आपको कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आपके आसपास अगर कोई जानवर ऐसा है जिसे रेबीज है तो आपको म्यूनिसिपैलिटी को कॉल कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। जिस हिसाब से जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होंगे उस जानवर को या तो मार देंगे या फिर जो भी उनको करना होगा वो कर देंगे। साथ ही में अगर आपको कोई घाव हो गया है अपने शरीर पर तो उसको आपको रेगुलरली समय समय पर साफ़ सफाई उसके करते रहना चाहिए, उसे साबुन से आपको धोते रहना चाहिए और ठीक से साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी अगली बीमारी की, जिसका नाम है छोटी माता और उसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। और ये होता है एक वायरस के द्वारा जिसका नाम है वेरिसेला ज़ोस्टर, और इसका संचरण होता है वायु से या फिर जो रोगी व्यक्ति है उनके सीधे संपर्क में आने से भी हो जाता है। उसके बाद इसके लक्षण हैं, देखे जाते हैं, हल्का बुखार होता है, मध्यम बुखार होता है उन रोगियों में जिनको चिकन पॉक्स की बीमारी हो जाती है, उनके पीठ में दर्द होता है, घबराहट देखी गई है, पूरे शरीर पर दाने हो जाते हैं, पहले गले, फिर चेहरे और फिर हाथ पैरों में दाने हो जाते हैं। और जो ये दाने होते हैं वो 4 से 7 दिनों के बाद में इनके ऊपर पपड़ी जम जाती है और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये खुद ही झड़ जाते हैं। उसके बाद बचाव कैसे किया जाना चाहिए, तो जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनसे आपको खुद को दूर रखना चाहिए, उनकी जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं जिनका वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं उनको भी दूर रखना चाहिए। और अगर आप किसी रोगी व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं तो आपको खुद को भी साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। उसके बाद उपचार कैसे किया जाए, तो इसका उपचार किया जाता है आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुछ खास तरह के मलहम दे देंगे जिनका आपको सेवन करना होगा, जिस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे उस हिसाब से ही। और भी अगर कोई बातें आपको डॉक्टर बताते हैं घरेलू उपचार, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमने बात की थी खसरा मीजल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये भी एक वायरस से होता है जिसका संचरण होता है वायु के द्वारा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसके लक्षण के रूप में आपको देखा जाता है कि जो लाल लाल दाने हो जाते हैं, जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, उनको खुजली होने लगती है जिसकी वजह से शरीर में जलन भी होने लगती है। उसके बाद इससे बचाव क्या क्या कर सकते हैं आप, तो जो रोगी व्यक्ति है उससे रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अलग रखा जाना चाहिए, जो उनकी वस्तुएं हैं उनको भी अलग रखा जाना चाहिए, टीकाकरण ज़रूर करवा दिया जाना चाहिए रोगी व्यक्ति का। अब इसका उपचार कैसे किया जाए, तो उपचार ऐसे किया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ क्रीम दे देते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम दे देते हैं, और जैसे जैसे डॉक्टर बताएं उस हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दवाएँ भी जो डॉक्टर बताते हैं उनको भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सर्दी ज़ुकाम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सर्दी ज़ुकाम की जो बीमारी होती है वो वायरस से होती है जिसका नाम है राइनो वायरस, और इसका संचरण होता है वायु के द्वारा। उसके बाद इसके लक्षण मैंने आपको बताए थे। लक्षण में क्या होता है कि जो सांस की नली होती है, जो हमारा नाक होता है और जो गला होता है, ये सभी के सभी संक्रमित हो जाते हैं जिसकी वजह से इनमें हमें तकलीफ देखने को मिलती है। आँख और नाक से तरल पदार्थ निकलता है, आँखों से हमेशा ऐसा लगता है कि आंसू आ रहे हैं और नाक भी बहने लगती है जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनकी। उसके बाद आंखों में जलन और बुखार की तकलीफ भी कई बार देखी गई है। उसके बाद इससे उपाय जो बचाव के हैं वो कैसे किए जा सकते हैं, तो छींकते और खांसते समय में जो रोगी व्यक्ति हैं उनको अपना मुंह हमेशा ढक करके रखना चाहिए रुमाल से, और रुमाल को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति जो देख रहा है कि उनके आसपास कोई छींक या खांस रहा है तो उनको भी खुद को दूर कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इनका उपचार कैसे किया जाना चाहिए, तो चिकित्सक की सलाह पर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनका अच्छे से सेवन किया जाना चाहिए। अगर चिकित्सक बोले कि विटामिन सी की ज़रूरत है तो उसी हिसाब से विटामिन सी भी लेनी चाहिए और समय समय पर भाप ज़रूर लगाना चाहिए। भाप लगाने से काफ़ी फ़ायदा देखा गया है सर्दी जुकाम के मरीजों में। उसके बाद आगे हमने बात की थी दस्त एवं पेचिश के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक जीवाणु से होता है जिसका नाम है ई कोलाई और इसका संचरण होता है विषाक्त भोजन या जल द्वारा। मतलब कि अगर कोई भोजन या जल ऐसा है जिसमें ई कोलाई का बैक्टीरिया मौजूद है तो हमें दस्त या पेचिश की बीमारी होने का खतरा हो सकता है। उसके बाद जिन व्यक्तियों को ये बीमारी हो जाती है उनमें देखा गया है कि उनके मल के साथ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उनको उल्टी बहुत ज़्यादा आती है, आंतों में संक्रमण हो जाता है, बार बार उनको पतले दस्त आते हैं, शरीर से पानी की कमी हो जाती है, चेहरा जो उनका होता है वो मुरझा जाता है, पेट दर्द की तकलीफ देखी गई है, सिर दर्द की तकलीफ देखी गई है, कमजोरी देखी गई है और उनको बहुत तेज प्यास आने लगती है, ये भी देखा गया है। तो इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं? तो बचाव करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो शौचालय होता है उसको हमें अच्छे से साफ रखना चाहिए, खाने पीने की वस्तुओं को हमें ढक कर के रखना चाहिए, खाना अच्छे से पका करके खाना चाहिए, पानी जो होता है उसे बहुत अच्छे से उबाल करके छान करके पीना चाहिए, जो फल या सब्जियाँ होती हैं उनको हमें गर्म पानी से धो लेना चाहिए, और अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके आसपास मल अगर उससे हो गया है, चाहे उसको उल्टी आ गई है, तो उसे फटाफट साफ कर देना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमण ना हो जाए और उनको भी ये बीमारी ना हो जाए। उसके बाद उपचार कैसे किया जाए, तो उपचार करने के लिए ORS का घोल दिया जा सकता है, इलेक्ट्रोल दिया जा सकता है और चिकित्सक की सलाह से अलग अलग दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। उसके बाद हमने मलेरिया के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से और इसका संचरण होता है फीमेल एनोफिलीस मच्छर के द्वारा, मतलब कि कीट होती है, ये एक कीड़ा है जिसका नाम, जो मच्छर है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीस, मतलब कि मादा एनोफिलीस है और इस कीड़े की वजह से होता है ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये लोगों को हो जाती है, इसके वजह से बीमारी मलेरिया नाम की हो जाती है। उसके बाद इसके लक्षण क्या क्या हैं, लक्षण हैं तेज़ ठंड लगती है, जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है उसको बहुत तेज़ ठंड लगती है और उसमें बुखार भी बहुत ज़्यादा होता है, जब जब बुखार होता है तब तक उनको ठंड लगने की तकलीफ भी देखी गई है, और ऐसे व्यक्तियों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उनको इनका चेहरा लाल हो जाता है और इनका जो लीवर और प्लीहा होता है उसमें सूजन हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आप कैसे बचाव के उपाय कर सकते हो, आपको क्या करना होता है कि अगर आपके आसपास कहीं पर कोई पानी इकट्ठा है तो आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, साफ़ रखनी चाहिए अपने आसपास की जगह को और मच्छर नहीं आने देना चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, घरों में जो खिड़की दरवाजे होते हैं उसमें भी आपको जाली लगवा देनी चाहिए ताकि मच्छर आपके घर के अंदर में ना आ पाए। उसके बाद उपचार कैसे किया जाए, तो उपचार करने के लिए डॉक्टर पहले रक्त की जांच करते हैं और उसी हिसाब से दवाइयां भी दे सकते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसकी, अब हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है रोगकारक कृमि के बारे में। रोगकारक कृमि मतलब कि अपने वर्म्स का नाम सुना होगा, इंग्लिश में कृमि को वर्म्स कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर में कृमि हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, अगर बच्चों को हो जाए तो उनकी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उनको थकान होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, बच्चों को भूख लगना कम हो जाता है, उनके पेट में दर्द रहता है, उल्टी आती रहती है, दस्त होने की तकलीफ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उनके मल में कई बार बच्चों के खून भी आने लगता है, उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उनके पेट में सूजन देखी जाती है बच्चों के, और लगातार खांसी भी कई बार बच्चों में देखी जाती है और उनके वज़न में लगातार कमी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों चित्र 8.2 पेज नंबर 85 में एक कृमि संक्रमण चक्र दिखाया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे एक कृमि का विकास होता है व्यक्ति के शरीर के अंदर में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें पहले से ही कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके शरीर में जो कृमि का लार्वा होता है वो विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो एक ठीक ठाक कीड़ा बन चुका होता है, वर्म बन चुका होता है, तैयार हो चुका होता है और इस व्यक्ति की आंत में वो रह रहा होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कभी वो व्यक्ति शौच करता है तो उस कृमि के जो अंडे होते हैं वो उस व्यक्ति से बाहर आ जाते हैं, उसके शौच में आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर के इलाके में खुले में शौच करता है तो उसके शौच में जो अंडे हैं वो मिट्टी के अंदर में रहते रहते विकसित हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस मिट्टी के संपर्क में आता है तो ये जो कीड़े होते हैं, कृमि जो होती है, ये क्या करते हैं, ये उनकी स्किन के ज़रिए, उनकी जो चमड़ी होती है उसके ज़रिए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं त्वचा के ज़रिए, और उसके बाद ये विकास करने लग जाते हैं, लार्वा में बदल जाते हैं, ये जो अंडे होते हैं ये लार्वा में बदल जाते हैं और उसके बाद और बड़े हो जाते हैं और शरीर को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप बचाव कैसे कर सकते हो कृमि के संक्रमण से खुद को, आप जब हाथ धोते हो तो आपको अपना हाथ जो होता है वो बहुत अच्छे से साबुन इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में आपको हमेशा जो हाथ होता है वो बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। उसके बाद आपके जो फल और सब्जियां होती हैं उनको आप इस्तेमाल करने से पहले बहुत अच्छे से पानी से आप उसे धोएं तभी इस्तेमाल करें। उसके बाद जो पानी आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो पीते हो पानी, उसको हमेशा उबाल करके, छान करके और ठंडा करके आप पी सकते हो। हमेशा उबाल कर ही पानी आपको पीना चाहिए ताकि जो उसमें कोई कीड़े आ गए हों वो उसी में मर जाएं उबालने की वजह से। उसके बाद आपको कहीं पर भी मिट्टी में अगर कहीं खेलने वगैरह जा रहे हो तो आपको जूते या चप्पल पहनकर ही रहना चाहिए ताकि जो कृमि है वो त्वचा के ज़रिए आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। उसके बाद आपको अपने जो नाखून होते हैं उन्हें हमेशा छोटे करके और साफ रखने चाहिए। उसके बाद आपको कभी भी खुली जगह में शौच नहीं करना चाहिए, या फिर कोई और व्यक्ति खुली जगह में शौच करता है तो आपको उन्हें मना करना चाहिए और आपको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। आपको शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, शौचालय के आसपास में साफ सफाई रखनी चाहिए। बच्चों को कृमि नियंत्रण के फायदे आपको समझाने चाहिए और कई बारी कुछ दवाइयाँ भी मिलती हैं अस्पतालों से ताकि अगर पेट में बच्चों की कृमि हो गई है तो वो मर जाए तो वो भी आप दवाएं लेकर के बच्चों को दे सकते हो, हर महीने या हर हफ्ते पीने को दे सकते हो ताकि आपके बच्चों में अगर पेट में कृमि हो भी गई है तो वो मर जाए और आपका बच्चा हेल्दी हो जाए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि बच्चों को जो कृमि नियंत्रण के फायदे हैं वो समझा सकते हो, जैसे कि आप बच्चों को ये बता सकते हो कि अगर उनके शरीर में कृमि नहीं रहेगा तो वो रेगुलर स्कूल जा सकते हैं, आंगनवाड़ी जा सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई मिस नहीं होगी और उनको कभी भी पढ़ाई में तकलीफ नहीं आएगी। दूसरा ये होगा कि अगर उनके शरीर में कोई कृमि नहीं होगी तो वो हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, उनमें कभी भी कोई रोग नहीं लगेगा, उनका शरीर फिट रहेगा। उसके बाद उनका विकास भी बहुत अच्छे से होगा, उनकी अच्छी हाइट होगी, वो हेल्दी होंगे, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, हर चीज़ में वो अच्छे होंगे। तो उन बच्चों में जिनमें कोई कृमि नहीं होती वो बच्चे बहुत ही हेल्दी यानी कि स्वस्थ होते हैं। उसके बाद कुछ अलग अलग विशिष्ट रोगों के बारे में अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि पहला रोग है जिसका नाम है नारू और इसे बाला भी कहते हैं। तो ये रोग किससे होता है, ये रोग होता है सफ़ेद रंग के धागे जैसे दिखने वाले गोल कृमियों से होता है जिनकी लंबाई होती है करीब 30 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच में। और इससे ये जो बीमारी होती है इसमें इस रोग का संचरण कैसे होता है, तो रोग का संचरण होता है जल के द्वारा। और इसमें जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिख सकते, आप माइक्रोस्कोप के जरिए ही उन जीवों को देख सकते हो। तो कौन से सूक्ष्म जीव से ये बीमारी होती है, साइक्लोप्स नाम के सूक्ष्म जीव से जो जल में मौजूद होता है, पानी में मौजूद होता है, और इसी की वजह से ये बीमारी होती है। स्वस्थ व्यक्तियों में ये पहुंच जाता है जिसकी वजह से जैसे ही वो प्रवेश कर जाता है उस व्यक्ति को इस बीमारी की वजह से तकलीफ शुरू हो जाती है। अब रोग का कारण क्या है, ये बीमारी होने का कारण क्या है, जो अस्वच्छ जल का अगर आप सेवन करोगे, ऐसे जल का सेवन करोगे जो साफ नहीं है, गंदा है, तो आपको ये रोग लग सकता है। या फिर जो कुएं, तालाब और बावड़ी होते हैं अगर वो दूषित हैं, गंदा पानी है वहाँ का, तो उसको इस्तेमाल करने से भी इस बीमारी के लगने का खतरा होता है। उसके बाद आप जब भी पानी पीते हो अगर आप बिना उबाले और बिना छाने पियोगे तो भी आपको इस बीमारी के लगने का खतरा होता है। उसके बाद लक्षण क्या क्या हैं, इस बीमारी के लक्षण हम कैसे पहचाने। तो सबसे पहला है कि हाथ या पैर की त्वचा पर फुंसी अगर आपके हो गई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कहीं ये बीमारी तो नहीं हुई है। उसके बाद दूसरा है कि जो मादा कृमि मांसपेशियों में विकास करने लगती है तो वो भी आप देख पाओगे कि जहाँ पर फुंसी हो गई है अगर वो बढ़ती जा रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये बीमारी हो गई है। और अगर आपके जहाँ फुंसी हुई है वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये बीमारी हो गई है जिसका नाम है नारू या फिर बाला। और साथ में अगर आपको बुखार भी आ रहा है तो भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर आएं। उसके बाद पांचवा कारण है कि अगर कृमि को समय पर नहीं निकाला जाए तो मरने पर यह विषैला पदार्थ छोड़ देती है जिससे उस जगह पर गांठ भी बन जाती है। तो अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि कहीं पर आपकी फुंसी हुई थी या फोड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसके बाद जैसे ही फोड़ा ख़त्म हुआ वहाँ पर आपको गांठ दिखाई दे रही है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको ये बीमारी हुई है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद बचाव के क्या क्या कारण हैं, बचाव कैसे कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहला है कि आपको जल को हमेशा उबाल करके उसको ठंडा करके फिर छान करके ही पीना चाहिए। उसके बाद अगली बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। और ये किससे होती है, ये एक जीवाणु से होती है। और क्यों होती है ये बीमारी, तो जो रोगी व्यक्ति हैं अगर हम उनसे निरंतर संपर्क में रहेंगे, उनको स्पर्श करने से, उनको छूने से हमें ये बीमारी लग सकती है। लक्षण क्या क्या है इस बीमारी के, तो जिन व्यक्तियों को ये बीमारी हो गई है, कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है, उनके त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। ये चकत्ते जो होते हैं वो सुन्न होते हैं, मतलब वहां पर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। और इन चकत्तों पर आपको जो चोट लगती है, जलन होती है या फिर दर्द होता है, इन चकत्तों पर आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। तो ऐसी जगह आपको अगर कोई चकत्ते हुए हैं जो सुन्न है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। उसके बाद चौथा लक्षण इसमें ये बताया गया है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में ये चकत्ते बन जाते हैं जो सुन्न होते हैं, जहां पर आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, तो अगर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो अंग ही काम करना बंद कर देता है। जहां पर बहुत ज्यादा अगर चकत्ते हो गए हैं, कुष्ठ रोग के चकत्ते, तो वो अंग ही काम करने बंद कर देता है। उंगलियों में विकृति भी देखी गई है कई बार कुष्ठ रोगियों में। उसके बाद बचाव के क्या क्या उपाय हैं, तो बचाव का पहला उपाय ये बताया गया है कि जो रोगी व्यक्ति हैं उनको अलग रखा जाना चाहिए। और वो रोगी व्यक्ति जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को भी अलग से रखा जाना चाहिए। उनके कपड़ों को डिटॉल से धोया जाना चाहिए। उसके बाद उपचार कैसे किया जाए, अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर ही इनका इलाज कर सकते हैं, टीकाकरण कर सकते हैं डॉक्टर, या फिर अगर पूरा का पूरा अंग उनका क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा अंग खराब हो चुका है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उस अंग को निकाल के कृत्रिम अंग भी लगा सकते हैं, नकली अंग लगा सकते हैं। उसके बाद अगली बीमारी का नाम है यहाँ पर अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एड्स भी कहते हैं इसको। ये एक बहुत ही घातक रोग है बच्चों। जिस भी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। उस मृत्यु को थोड़े दिनों के लिए तो टाला जा सकता है दवा देकर, लेकिन उसकी मृत्यु रोकी नहीं जा सकती। इसीलिए इस बीमारी के बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में होता ये है कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नष्ट हो जाती है। मतलब क्या होता है कि उसका शरीर, आप लोगों के शरीर में हमेशा आपका शरीर ऐसा बनाया गया है कि आपका शरीर आपको अगर कोई रोग लगे तो उससे आपको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनमें अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, उनमें रोग से उनका शरीर उनको नहीं बचा पाता। तो यहाँ पर आप इस बीमारी के नाम को समझने की कोशिश करो, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड का मतलब कि प्राप्त की गई, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी।
इसको कहा जाता है कि हमने ऐसी बीमारी प्राप्त कर ली है जिसमें हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी कर दी है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही इस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है, वो किसी भी रोग से उसका शरीर नहीं लड़ पाता है, उसको कोई भी बीमारी लग सकती है, उसको अगर खांसी भी होगी तो उसको निमोनिया हो जाता है सीधा के सीधा। और इसी तरीके से अलग अलग बढ़ चढ़ के जो बीमारियां हो जाती हैं उसकी वजह से ऐसे व्यक्ति जिनको ये बीमारी हुई है उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और रोग से ना लड़ पाने की वजह से इन व्यक्तियों की अंत में मौत ही हो जाती है। तो ये रोग होता कैसे है लोगों को? तो लोगों के अंदर में HIV वायरस जो होता है वो अगर प्रवेश कर जाए तो इसकी वजह से ये बीमारी लग सकती है। और ये HIV वायरस कैसे फैलता है लोगों में? तो ये संक्रमण हो जाता है। कोई व्यक्ति जिसको पहले से ही ये बीमारी है, अगर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, उसको वो बीमारी लग सकती है। शारीरिक संबंध बनाने की वजह से ये बीमारी लग जाती है, यौन संबंध बनाने की वजह से ये बीमारी लग जाती है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये बीमारी अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होगी तो इसका मतलब है कि उनके बीच में उनके रक्त का कॉन्टैक्ट हुआ है, मतलब कि दोनों व्यक्तियों का रक्त जो है वो संपर्क में आएगा तो संक्रमण होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये कब कब हो सकता है? रक्त किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में संपर्क में कैसे आएगा? इंजेक्शन जब लगता है तो उसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को जिसको ये बीमारी है अगर उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया है तो उसमें ज़रूर उस इंजेक्शन में उसके रक्त के कुछ कण लग जाएंगे। और उसी इंजेक्शन को अगर दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल किया जाए जो स्वस्थ है तो उसको भी ये बीमारी लगने का खतरा होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि कभी भी आप किसी अस्पताल में जाएं तो आप डॉक्टर से हमेशा ये कहें कि आपको नया इंजेक्शन लगाएं वो, और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो इंजेक्शन जो आपके ऊपर इस्तेमाल किया गया है उसको तुरंत ही नष्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद संक्रमित ब्लेड से भी लग सकता है। देखो, जब किसी व्यक्ति के ऊपर उस्तरा इस्तेमाल किया जाता है और मान लो उनको कुछ उनके गाल पे कट जाए, उस ब्लेड से उनका गाल कट जाए या फिर कहीं भी उनका त्वचा कट जाए, तो उस ब्लेड के ऊपर क्या होगा, उनके रक्त के कुछ कण लग जाएंगे। और अगर उसी ब्लेड को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल किया जाए और उनके भी जख्म में ये उनके जो बीमार व्यक्ति हैं उसके रक्त के कण अगर उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी ये बीमारी लग सकती है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कभी बाल कटवाने जाएं किसी नाई के पास या फिर उस तरह का इस्तेमाल अगर नाई आपके ऊपर करे तो आपको नया ब्लेड लगवाना चाहिए, कभी भी पुराना ब्लेड आपको अपने ऊपर इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए। उसके बाद ऐसी माएँ जिनके गर्भ में कोई शिशु पल रहा हो और उन माँ को ये बीमारी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उनको भी ये बीमारी हो सकती है। साथ में बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र बनाकर HIV वायरस का चित्र दिया गया है। चित्र 8.4 पेज नंबर 87 में आपको बताया गया है कि HIV का वायरस किस तरीके का दिखता है। तो बच्चों मैं आज की क्लास तो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको फिर से खुद से पढ़ लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।